अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान ज़फ़र हैदर। आज इस्लाम टाइम्स की मेहमान शख्सियत हैं असगरिया इल्म व अमल तहरीक पाकिस्तान के बानी चेयरमैन इंजीनियर सैयद हुसैन शाह मौसवी साहब। इंजीनियर हुसैन शाह मौसवी साहब का ताल्लुक सिंध के ज़िला खैरपुर के गांव बुज़दार से है। 1970 में आपने नौजवानों पर मुश्तमिल तंजीम असगरिया की बुनियाद डाली। ज़बान तालिब इल्मी के दौरान आपने असगरिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से तंजीमी फ़ालियत का आगाज़ किया। 1984 में आप असगरिया स्टूडेंट्स के मरकज़ी सदर मुंतखब हुए। 1985 में असगरिया स्टूडेंट से फारिग होने वाले नौजवानों के लिए असगरिया ग्रेजुएट्स ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जो बाद ज़्यादा असगरिया ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील हो गई। शेख कायद अल्लामा सैयद आरिफ हुसैन अलहुसैनी की दौरे क़यादत में उनसे वाबस्ता हुए और शेख कायद अल्लामा आरिफ हुसैनी की शहादत तक उनसे वाबस्ता रहे। इस दौरान तहरीक निफाज़ फ़िक्र जाफ़रिया के प्लेटफॉर्म से मुसलसल मुख्तलिफ़ तंजीमी अहदों पर ज़िम्मेदारियाँ सरंजाम देते रहे। आज इस्लाम टाइम्स ने इंजीनियर हुसैन शाह मौसवी साहब के साथ एक खसूसी नशस्त का अहतमाम किया है, जिसमें अमरीकी दबाव, खारजा महाज़ों के साथ साथ अब अंदरूनी महाज़ पर भी अमरीका की नाकामी, अमरीकी धमकियों के बावजूद ईरानी तेल बरदार जहाज़ों की बाहिफाजत वेनेज़ुएला आमद जैसे मौजूद पर गुफ्तगू होगी। आइए चलते हैं, इंजीनियर हुसैन शाह मौसवी साहब के साथ इन मौजूद पर गुफ्तगू करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम
वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले बहुत
अल्हम्दुलिल्लाह
कि आपने इस्लाम टाइम के लिए अपना तंदी मतलब में से वक्त निकाला। इदारे की जानिब से आपके मशहूर हैं।
बहुत शुक्रिया, आपने भी वक्त निकाला और मेरे पास तशरीफ़ लाए। इंशाल्लाह अच्छी बातें होंगी।
अच्छा, अगर सबसे पहला सवाल ये कि अमरीकी जवाल की तारीख, अमरीका जो जिन हवालों से जवाल का शिकार रहा है अपने यानी तारीख के अंदर, क्या अस्बाब आपको नज़र आते हैं?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तो समझता हूँ कि अमेरिका का जवाल उसी वक्त शुरू हो गया था जब सोवियत यूनियन टूट गया। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि अमेरिका पूरी दुनिया को एक सोवियत यूनियन का हवा बना के और दुश्मन जाहिर करके सबको अपने साथ रखता था। जब ये दुश्मन टूट गया तो अपने साथ रखने का जो जवाज़ था अमेरिका के पास वो ख़त्म हो गया। मगरबी दुनिया को भी अपने पास रखता था इसी बहाने से, ख़ास तौर पर यूरोप को और उनके जो वसाइल है वो इस्तेमाल करता था कि आपका जो डिफेंस सिस्टम है वो इतना नहीं है सोवियत यूनियन के मुकाबले में, तो हम आपको डिफेंस देंगे, आपकी सिक्योरिटी की ज़मानत देंगे। इसलिए वो सारी दुनिया को अपने साथ रखता था। जब सोवियत यूनियन टूट गया तो उसके बाद उसके पास कोई इस तरह का बहाना नहीं रहा। अब उसने अपनी पॉलिसी बदलनी थी, इसी हवाले से उसने जो है एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नाम भी दिया था, लेकिन कुछ कर नहीं पाया, इसलिए कि उसके बाद अमेरिका के पास कोई ऐसी क़यादत नहीं आई जो एक जदीद निज़ाम जो है वो सामने पेश करता। इसलिए उसी दिन से फिर जो है वो सारी दुनिया अमेरिका को छोड़ने के लिए आमादा हो गई, क्योंकि दुश्मन ख़त्म हो गया। अब अमेरिका ने वही ज़बरदस्ती धोंस और धांधली के ज़रिए से बाकी रखना चाहा। हमारे सामने है पूरी तारीख अमेरिका की, ख़ास तौर पे ये दूसरी जंग अजीम के बाद आप वियतनाम को देखें, आप कोरिया को देखें, फिर जो माजी करीब है अफ़गानिस्तान को देखें, इराक को देखें, और अभी हम देख रहे हैं लीबिया के हवाले से। तो उसने अपना कोई तरीका बदला नहीं, वही जुल्म का तरीका जो था उसके पास वही उसने कायम रखा, और जुल्म जो है वो दुनिया में कायम नहीं रहता। जैसे मौलाना ने भी फरमाया था कि हुकूमतें और रियासतें कुफ्र के ज़रिए से बाकी रह सकती हैं, लेकिन जुल्म के ज़रिए से बाकी नहीं रह सकती। इसलिए ये एक सरमायदाराना मुल्क था, सरमायदाराना एक जो है निज़ाम था, वही जुल्म उसका बरकरार रहा और वही उसका बुनियादी सबब है जो ख़ात्मे का है।
यानी अमेरिका आज जो जवाल पजीर है किसी भी उनवान से, उसका बुनियादी नुक्ता जो है वो जुल्म,
बुनियादी नुक्ता जुल्म है उसके अंदर। और थोड़े अरसे के लिए वो कामयाब इसलिए हुआ कि इसके मद्दे मुकाबल सोवियत यूनियन था तो दुनिया को अपने साथ रखा, अब कोई नहीं है इसलिए वो बहाना भी ख़त्म हो गया इसका।
अच्छा आका साहब, अमेरिका को हम देखते हैं कि मशरक वस्ता समेत जितने भी खारजी महाज हैं, अमेरिका को पे दर पे शिकस्त का सामना उसमें हमें नज़र आता है, नाकामी नज़र आती है, चाहे वो इराक का महाज हो, चाहे अफगानिस्तान का महाज हो, खुद मशरक वस्ता का महाज हो। रिसेंटली हम शाम में देखते हैं कि वो 2 हफ्तों का दावेदार था बशार की हुकूमत कराने में, लेकिन अब ना सिर्फ नाकाम बल्कि बहुत संगीन इसको सूरतहाल का सामना है। अब हम ये देख रहे हैं कि खारजी के बाद अंदरूनी महाज सभी नाकाम नज़र आते हैं, मसलन करोना जैसे जरसों में का इलाज करने में नाकाम रहा, खाओ पाने में नाकाम रहा, और अब हम देख रहे हैं कि जो है उसकी अपनी आवाम जो है वो वहाँ पे बदतरीन जो है वो अदम तहफ़ का शिकार, जो अंदरूनी महाज सभी नाकाम नज़र आ रहा है खारजी के बाद, इस सूरत को कैसे देखते हैं आप?
जी, अंदरूनी निज़ाम जो अमेरिका का है वो वही जिसे हम कहते हैं कि जी मुआशरा बूढ़ा हो चुका है, निज़ाम बूढ़ा हो चुका है, इदारे उनके बूढ़े हो चुके हैं। मुआशरे को चलाने के लिए जो एक सालेह क़यादत चाहिए वो इदारे पैदा नहीं कर रहे, इसलिए इदारे इस काबिल नहीं हैं कि अब अमेरिका को चला सकें, चे जाए कि वो दुनिया को चलाएं। इसलिए हम देखते हैं कि जो पेंटागन है वो कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, इसी तरह से जो ये वाइट हाउस है वो ख़ुद जो है अपने लीडर से तंग है, और मुख्तलिफ जो किताबें हमारे सामने जो है आ रही हैं कि वाइट हाउस जो है वो जैसे कि पूरा का पूरा जो है अपने लीडर से जो है वो तंग है, और लीडर जो है रोज़ाना उनकी जो है इज़्ज़त ख़राब करता रहता है। और तो ये एक निज़ाम ज़ुल्म का निज़ाम था, उसके इदारे जो है बूढ़े हो चुके हैं, उसके जो कुव्वत के मराकज़ थे वो ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए एक नेचुरल है कि इदारे ख़त्म हो जाएं और क़यादत ना हो, तो फिर जो है वो यही सूरत हाल होती है जो हमारे सामने है। ये ख़ास तौर पे जो नस्ली इम्तियाज़ है ये तो पुराना है, इसलिए कि अमेरिका में जब ये गोरे आए थे तो रेड इंडियन जो है उनको इन्होंने जैसे कि मुल्क से निकाल दिया था, तो ये नस्ली इम्तियाज़ की बुनियाद पे तो बना था, गोरों ने आके कब्ज़ा किया यहाँ पे। नस्ली इम्तियाज़ अगर ख़त्म करते हैं तो फिर अमेरिका की वो बुनियाद ही ख़त्म हो जाती है, इसलिए वो उसी पे अभी तक कायम है। सूरत हाल सिर्फ ये थी कि चूंकि मीडिया सारा उनके हाथ में है तो वो उस तरह की ख़बरें जो है सामने नहीं आती थी, अब सोशल मीडिया एक अल्टरनेट जो हमारे सामने आया है तो उसकी वजह से ख़बरें भी आ रही हैं, और फिर जो मेन मीडिया है वो भी मजबूर है कि उन ख़बरों को सामने लाए, इसलिए ये पुराना उनके अंदर तजाद मौजूद था, ये नस्ल परस्ती गोरों के पास पुरानी है, और अमेरिका का बुनियाद उसी पे इन्होंने जो है वो रखा है, और ये ख़त्म नहीं हो सकती उनके अंदर से।
और अगर ये ख़त्म हो जाती तो फिर अमेरिका का,
अगर ये ख़त्म हो जाती है तो फिर देखें कि सूरत हाल क्या बनेगी। इसका मतलब ये है कि गोरों को बाकी दुनिया पे कब्ज़ा करने का कोई बहाना हाथ नहीं है, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि एक तो ये था कि जी सोवियत यूनियन था, एक ये था कि जी हम जो है वो एक तहज़ीब याफ्ता कौम हैं, तहज़ीब याफ्ता कौम कभी भी नस्ल परस्त नहीं होती, तहज़ीब याफ्ता कौम कभी भी सिर्फ़ रंग और नस्ल की बुनियाद पे दूसरे को जो है वो गिरा हुआ नहीं समझती, हकीर नहीं समझती है। ये तहज़ीब याफ्ता नाम लेके उन्होंने एक बुराई की बुनियाद डाली थी, इसलिए ये ख़त्म भी नहीं कर सकते अपने अंदर से, और इसका यकीनी नतीजा जो है वो तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं।
सही। अच्छा, हम ये देखते हैं कि अमेरिका का एक दावा है कि दुनिया की क़यादत करने का, दुनिया की आवाम को जो है वो निजात देने का, और जो है वो खुसूस दहशतगर्दी के खिलाफ हम जंग की बात करते हैं, और फिर दूसरा है कि वो इंसानी हकूक़ की अलमबरदारी का भी दावा करता है, जैसे आपने अभी अर्ज़ किया कि अपने आप को बहुत मोस्ट सिविलाइजेशन मिशन समझता है, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ तो अपनी आवाम को कोरोना से निजात नहीं दिला सका, बल्कि अब हम देख रहे हैं कि बदतरीन अमेरिकी आवाम जो है बदतरीन नस्ली तासुब का शिकार नज़र आ रही है और लाखों करोड़ों की तादाद में आवाम जो है सड़कों पर हैं और अमेरिका जो है वो ऐसा लग रहा है कि बस टूटने के करीब है, हत्ता कि खुद अमेरिका के अंदर जो है उसके झंडे उसकी अपनी ही आवाम के हाथों जलाए जा रहे हैं। इस सूरतहाल में को आप कैसे देखते हैं?
आप देखें, अमेरिका ये कहता था कि जी सारी दुनिया को हम चला रहे हैं, सारी दुनिया को हम जो है वो इमदाद दे रहे हैं, हालांकि सारी दुनिया के वसाइल वो जो है वो हड़प करता था और जुल्म के ज़रिए से अपने मिल्कियत में लेता था। ये कोरोना वायरस ने जो है वो सबको सामने ये कर दिया कि अमेरिका ने इस मुश्किल सूरत हाल में न सिर्फ ये कि किसी भी मुल्क की कोई इमदाद नहीं की, कोई मदद नहीं की, हत्ता कि शायद ज़बानी भी कोई जो है वो मदद नहीं की है, बल्कि बहुत से ममालिक के सामान पे उन्होंने ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया। जबकि इसके मुकाबले में चाइना ने एक हद तक जो है वो कई ममालिक की मदद की है, इसी तरह से छोटे छोटे ममालिक हैं, ईरान है, उन्होंने मदद की है, तुर्की ने मदद की है। तो बिल्कुल सामने आ गया है कि अमेरिका किसी की मदद नहीं करता, ना पहले करता था ना अब जो है करता है, वो सिर्फ़ अपने मफादात को देखता है और इस सूरत हाल ने बिल्कुल जो है आवाम के सामने और लोगों के सामने वाज़ कर दिया है कि अमेरिका किसी मज़लूम की कोई मदद नहीं करता, किसी मुश्किल में पड़े हुए इंसान का कभी हाथ नहीं थामता, वो अपने सिर्फ मफादात को देखता है और उसी के पीछे रहता है।
तो अभी जो वहाँ पर सूरत नज़र आ रही है नस्ल तासुब की, आवाम सड़कों पर करोड़ों की तादाद में झंडे जलाए जा रहे हैं उसके अपने ही शहरियों के हाथों, अपने ही मुल्क के अंदर, तो अब कहा जा रहा है कि अब अमेरिका का असर भी और मुस्तकबिल भी वही नज़र आ रहा है जो सोवियत यूनियन का नज़र आया। तो अमेरिकी मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है, टूटता हुआ नज़र आ रहा है, बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है जैसे लोग कह रहे हैं?
देखें, जैसे शुरू में मैंने अर्ज़ किया कि जुल्म कभी भी जारी नहीं रह सकता, वो अपने अंदर इतनी ख़राबी लिए हुए है कि तबाही के अलावा और कुछ नहीं लाता। अब ये और बात है कि कितना जल्दी अमेरिका जो है वो हिस्से बखरे होता है, चंद साल लगेंगे या एक दहाई लगेगी, ये अलहदा से बात है, लेकिन ये यकीनी है कि अब अमेरिका जिस जवाल की तरफ जा रहा है उससे वापसी उसकी मुश्किल है, शायद नामुमकिन की हद तक जो है वो है, इसलिए कि सारी दुनिया को उसने तंग किया, दुनिया की अक्वाम कोई भी अमेरिका की मदद करने के लिए कभी नहीं आएंगे, बल्कि वो तो किसी हद तक जो है जैसे कि अपने अंदर एक तरह का इंतकाम का जज्बा लिए हुए हैं कि अमेरिका ने हमें तबाह किया, बर्बाद किया, और कोई मौका मिले कि उससे अपने हिसाब किताब जो है वो ले लें। इसलिए अमेरिका की तबाही और इससे बखरे होना तो यकीनी है, लेकिन ये एक तय करने की बात है कि कितना जल्दी होगा, कितना देर में होगा, बहुत सारे अवामिल हैं कि उनको देखने की ज़रूरत है, वरना इसकी तबाही यकीनी हमारे सामने नज़र आ रहे हैं।
यानी अमेरिका दवाल का शिकार है, आप जल या बदेर बैरल उसके हिस्से और
मैंने अर्ज़ किया कि ये रूस के टूटने के बाद से ही नीचे जा रहा था, इसका मकाम, इसकी हैसियत दुनिया में अगर आप देखें, इसकी कुव्वत, इसका धौंस का जो एक खौफ था, और ख़ास तौर पे फिर इमाम खुमैनी के इस तहरीक ने जो है उसके खौफ को बिल्कुल जो है उड़ा के रख दिया, इसलिए उसी दिन से ये पीछे जा रहा था, अब ज़रा तेज़ी उसमें आ गई है और चूंकि सोशल मीडिया आ गया है तो ख़बरें भी ज़रा अच्छी लेवल पे जो है वो हमारे सामने आ रही हैं, वरना ख़बरें पहले से ये थी।
अच्छा, अमेरिका ज़वाल का शिकार है, तेज़ी से ज़वाल का शिकार है, कमज़ोर होता जा रहा है, दुनिया अपनी साख जो है वो खो चुका है, तो इस पूरे मंजरनामे में जो इस्लामी मकावमती ब्लॉक है जिसकी सरबराह ईरान कर रहा है, जिसमें हिजबुल्ला है, अब इसमें इराक और उसकी जो इस्लामी तहरीकें शामिल हो चुकी हैं, शाम है इसके अंदर, और फिर खुद फलस्तीनी जो मुज़ाहमती तहरीकें हमार इस्लामी जहाज वगैरह, तो इस पूरे जो इस्लामी मकावमती महवर है ईरान की सरबराही में, उसका मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है, कितना मजीद पावरफुल नज़र आ रहा है वैश्विक व्यवस्था में और दीगर जगहों पर?
देखें, एक तरफ तो अमेरिका कमज़ोर हो रहा है, दूसरी तरफ से ये मुकावमती जो तहरीकें हैं ये न सिर्फ ये के मजबूत हो रही हैं बल्कि इनके तजुर्बात जो है वो आपस में अब शेयर होना भी शुरू हो गए हैं। हिज़्बुल्लाह अपने तजुर्बात शेयर करता है फ़लस्तीनियों से, हिज़्बुल्लाह अपने तजुर्बात शेयर करता है शाम में, इराक़ में, यमन में। ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि ये मुज़ाहमती महाज, चाहे वो हिज़्बुल्लाह की सूरत में हो, उसको अपने सियासी तजुर्बात भी हैं और उसको अपने जंगी तजुर्बात भी हैं। इसी तरह से अगर आप देखें यमन में तो उनके पास सियासी तजुर्बात भी हैं और जंगी तजुर्बात भी हैं, और इन सब ने ये साबित कर दिया है कि जी ये एक तहरीक है जो कभी मज़लूम को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि मज़लूम की मदद करती है। आप अगर जो है हिज़्बुल्लाह की देख लें सूरत हाल, लुबनान में हिज़्बुल्लाह के साथ ईसाई भी हैं और दीगर मज़ाहिब और अदियान के मानने वाले भी उनकी हिमायत करते हैं। ये तभी हो सकता है जब दिल जो है वसी हो, तलब जो है वसी हो, जिसमें हर मज़लूम जो है समा सके। इसलिए इस मुकावमती तहरीक ने अपने आप को बहुत खूबसूरत बनाया है। इस मुकावमती तहरीक का अगर आप वसअत कल्बी देखना चाहें तो हम अरबईन पे करबला में देख सकते हैं। ये ऐसा एक जिसको कहते हैं कि वसअत कल्बी है कि दुनिया में पूरी तारीख़ में कभी किसी कौम के पास इतनी वसअत कल्बी नहीं आई। वहाँ पे आते हैं ज़वार, शिया हैं, सुन्नी हैं, हत्ता के जो है ईसाई हैं, हिंदू हैं, किसी भी दीन व मज़हब के मानने वाले हैं। न सिर्फ़ ये कि उनको जो है वो कोई अजनबियत महसूस नहीं होती वहाँ पे, बल्कि अपनायत महसूस होती है। ये वसअत कल्बी दुनिया में कभी किसी कौम के पास इतनी नहीं रही जितना इस मुकावमती महाज ने अपने आप को खूबसूरत और बेहतर बनाया है। और पूरी दुनिया में ये पैगाम इस तरह से फैला है कि पूरी दुनिया अब जो है वो इस मुकावमती महाज का जो नज़रिया है और जो सोच है उसको एक खूबसूरत शक्ल में देख रही है। इसलिए इस सोच का मुस्तकबिल रोशन है जो हर इंसान को अपने अंदर समो लेती है। ये वही सोच है जो रसूल अकरम की सोच थी, ये वही सोच है जो अली इब्न अबी तालिब की सोच थी। मौलाना मालिक अश्तर को जो अहदनामा लिख के दिया है मिस्र की गवर्नर बनाने के बाद, तो मौलाना ने कहा था कि जहाँ पे जा रहे हो दो लोग मिलेंगे, दो किस्म के लोग मिलेंगे, अखुल लका फिल दीन, या दीन में तुम्हारे भाई हैं, और नज़ीर लका फिल खल्क, या खुदा की मखलूक होने में तुम्हारे जैसे हैं। अब ये दो नज़र है इसके पास सिर्फ सामने वाले के लिए, या दीन में मेरा भाई है या खुदा की मखलूक होने के लिए लिहाज से मेरा मेरे जैसा है, मेरे मिसल है। ये एक खूबसूरत तरीन जो है वो सोच है और जो दुनिया के सामने अब खुल के करोड़ों लोग करबला में जमा हो के दुनिया को मैसेज दे रहे हैं, ये एक खूबसूरत तरीन तहरीक है पूरी इंसानी तहरीक, पूरी इंसानी तारीख में।
सही। अच्छा, अमेरिका दवाल के शिकार है और जल या वज़ीर जो है वो टुकड़े होने के करीब है सोवियत यूनियन की तरफ, और जिसके नतीजे में अल्टर जो इस्लामी मकामती ब्लॉक है वो जो है यकीनन मजबूत हो रहा है। अभी आपने तफसील दी अर्ज़ की, इसराइल का मुस्तकबिल फिर क्या नज़र आ रहा है? यानी कि फिर तो वो जैसे रहबर मौज़म ने इंकलाब इस्लामी हज़रतुल्लाह खामनेई ने फरमाया कि 25 साल नहीं देख पाएगा इसराइल, जिसमें तीन चार साल गुजर चुके हैं, तो क्या आप
देखें? देखें, मगरबी दुनिया ने, सरमायदारी ने ये यहाँ पे मिडिल ईस्ट में इसराइल एक जो है अपने थानेदार के तौर पे बनाया था। सऊदी अरब को जो है वो लालच दिलाने के हवाले से जो है वो बनाया था। चूँकि अब मगरबी दुनिया का मफाद مڈل ایسٹ نہیں رہا مختلف اسباب کی بنیاد پہ. ایک یہ ہے کہ تیل دنیا میں اور جگہ بھی بہت سال نکل آیا ہے, دوسرا ہے کہ امام خمینی کی تحریک نے یہاں پہ ان کے لیے نفرت بہت زیادہ پیدا کر دی ہے. اس لیے اب مغربی دنیا کو اسرائیل یا سعودی عرب کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اب اسرائیل اور سعودی عرب کو مغربی دنیا کی حمایت کی ضرورت ہے. اس لیے ٹرمپ جیسا آدمی یہ اسرائیل کی لابی لائی ہے, اس لیے کہ کوئی بھی سمجھدار انسان امریکہ میں جو لیڈر ہو اور پھر جو ہے اسرائیل کی اس طرح سے حمایت کرے وہ ممکن نہیں رہا. اسی طرح سے سعودی عرب کو ہم دیکھ رہے ہیں, یہ دونوں اب جو ہے کوشش میں ہیں کہ مغربی دنیا ہماری حمایت جاری رکھے, نہ کہ مغربی دنیا چاہتی ہے کہ یہ دونوں حکومتیں قائم ہوں. پاکستان کی صورتحال کی طرح ہے, جیسے کہ کسی دور میں جو ہے وہ امریکہ کا مفاد تھا پاکستان کے ساتھ, تو وہ چاہتا تھا یہاں پہ ڈکٹیٹر لاتے رہے وہ, لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اس کا مفاد نہیں رہا, تو اب پاکستان کوشش کرتا ہے کہ امریکہ ہماری حمایت کرے. تو جو نفسیات ہماری ہے اس وقت جو ہے اسرائیل کی وہی نفسیات ہے, اور اگر مغربی دنیا کی یہ حمایت کم ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے تو اسرائیل خود بخود ختم ہو جائے گا. یہ ایک جعلی ریاست ہے, یہ کوئی حقیقی ملک ہے ہی نہیں.
صحیح ہے. اچھا بالکل, میں آخری پوائنٹ کی طرف آؤں گا. بہت بڑی اچیومنٹ اس وقت ایران نے ایران کی سامنے آئی ہے. پہلے تو اس نے خلائی سیٹلائٹ چھوڑا, اور جس نے کامیاب سفر کیا خلا میں اپنے اہداف میں کامیاب ہوا. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ تمام تر دھمکیوں کے باوجود ایرانی تیل بردار جہازوں کو امریکہ کے پڑوس میں واقع ملک وینزویلا تک پہنچنے سے نہیں روک سکا. بہت دھمکیاں دیں لیکن ایران نے تمام دھمکیوں کو بالائے طاق کو رکھتے ہوئے سفر جاری رکھا, اور اس کی پانچ جو تیل بردار جہاز ہیں وہ وینزویلا پہنچے. کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں امریکہ تمام تر دھمکے باوجود جو ان کو نہیں روک سکا, ڈر گیا رد عمل سے ڈر گیا, یا اتنا کمزور ہو گیا کہ اب جو ہے وہ اب اس کی جو ہے اسے دھمکیوں تک محدود ہے, اور ایران اس کے پڑوس میں واقع ملک تک پہنچ گیا, اور یہ ایران کی ایک بڑی کامیابی دنیا کے بین الاقوامی تعلقات کے نظر میں اس کو بہت زیادہ بڑی اچیومنٹ دیکھی جا رہی ہے ایران کی, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟
جی, امریکہ پہلے بھی بہت سارے کام ملکوں سے جو لیتا تھا وہ خوف دلا کے لیتا تھا, دھمکیوں سے لیتا تھا, اور لوگ دھمکیوں میں آ جاتے تھے. لیکن یہ جب سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ آئے تو سب سے اہم ترین کام جو انہوں نے کیا وہ یہ ہے کہ امریکہ کا خوف لوگوں کے دلوں سے نکال لیا. اب خوف نہیں رہا, جب خوف نہیں رہا تو وہ کام بھی نہیں امریکہ کر پا رہا ہے جو خوف کی بنیاد پہ کرتا تھا. سب سے زیادہ اس کی جو حمایت تھی اسرائیل کے ساتھ, چاہے آپ سائنسی لحاظ سے لے لیں, چاہے آپ فوجی لحاظ سے لے لیں, اسلحے کے لحاظ سے لے لیں, لیکن اسی کے پڑوس میں ایران جو ہے وہ شام تک پہنچ گیا ہے اور کچھ نہیں کر پایا. امریکہ وہاں پہ موجود ہوتے ہوئے کچھ نہیں کر پایا, جبکہ ملک بھی جو ہے وہ جنگ کی حالت میں تھا. جنگ کی حالت میں شام, وہاں پہ امریکہ پہنچ گیا اسرائیل کے بالکل جو ہے سرحد کے ساتھ, اور امریکہ کچھ نہیں کر پایا. یہ ایک بہت بڑا جو ہے اس کے لیے پالیسی چینجر جو ہے وہ نقطہ تھا, کہ اس کے بعد امریکہ نے یہ سمجھا کہ اب ایران کے مقابلے میں جو ہے ہمارے پاس کوئی نہ وہ طاقت ہے فوجی, اس لیے کہ ایران کی طاقت بھی اب بہتر ہو گئی ہے, فوجی طاقت بھی نہیں ہے کہ اس کو دبایا جا سکے, خوف میں بھی نہیں آ رہا. اس لیے امریکہ کے مقابلے میں انہوں نے جو ہے وہ آخری ٹرمپ نے جو ہے غلطی کی تھی جو قاسم سلیمانی کو شہید کیا اور اسٹرائک ہوا بغداد میں عراق میں, اس کے بعد پھر ایران نے جو اپنا جس کو کہتے ہیں کہ ریپلائی دیا ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایک سبق تھا, جس کے بعد اب امریکہ میں نہیں سمجھتا کہ ایران سے کسی بھی طرح سے الجھنے کے لیے تیار ہوگا. یہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ دھمکیاں دے کے خوف دلا کے کبھی خوف دلاتا ہے کہ حملے کریں گے، کبھی خوف دلاتا ہے کہ جی پابندیاں لگائیں گے، آپ کے اقتصادیات خراب کریں گے، آپ کے یہ کریں گے یہ کریں گے، یہ ساری چیزیں ناکام ہو چکی ہیں ایران کے مقابلے میں، اس لیے اب کچھ نہیں کر پا رہا۔
بہت بہت شکریہ آپ کا، ایک بار پھر آپ کا شکر گزار ہیں کام ٹائم کی جانے سے کہ آپ نے انتہائی مصروفیات اور کے باوجود جو ہے وہ بہت شارٹ نوٹس پر جو ہے وہ ہمیں اپنے انٹرویو کے لیے وقت دیا، بہت بہت شکریہ
آپ کا، انشاءاللہ سلامت رہیں۔